الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إلى الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ حشر کی آیات پچھلی کلاس سے چل رہی ہے. اس میں ہم نے جو آخری مضمون پڑھا تھا وہ مہاجرین کے فضائل، مہاجرین کی جو خصوصیات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، تو ان میں مختلف اوصاف جو بیان کیے ہیں وہ ہم ذرا ریوائز کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ پیج نمبر 372 کے اوپر، پیج 372 معرف القرآن والیوم 8. تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مہاجرین کا جو کی جو پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے، للفقراء المہاجرین، تو اس میں پہلی صفت کیا ہے کہ یہ فقراء تھے. ٹھیک ہے، فقیر، فقیر کی جمع فقراء ہوتی ہے، اور فقیر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی اپنی ملکیت میں یا تو کچھ بھی نہیں ہو یا اتنا نہ ہو کہ جس کے اوپر زکوٰۃ نکالی جا سکے. تو یہ مہاجرین جو ہے فقراء کیوں کہلائے گئے؟ کیونکہ اگرچہ کہ ان میں سے بہت سے جو ہے وہ امیر بھی ہوا کرتے تھے، لیکن جب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو اپنا سارا مال اسباب وغیرہ جو ہے مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر آ گئے، اور اس کے اوپر کافروں نے قبضہ کر لیا، ان کی ملکیت سے وہ مال اسباب نکل گیا، فار ایور نکل گیا. ٹھیک ہے، ان کا کلیم جو ہے اس کے اوپر سے ختم ہو گیا، اس وجہ سے یہ فقیر بن گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی پہلی صفت تھی. دوسری صفت اسی پیج کے اوپر نیچے لکھتے ہیں کہ دوسری صفت مہاجرین کی اس آیت میں یہ ذکر فرمائی کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یعنی جو یہ دین اسلام میں داخل ہوئے تھے تو کسی دنیاوی غرض سے داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضوان تلاش کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے. فضل کا جو لفظ ہے وہ عمومی طور پر دنیاوی نعمتوں کے لیے بولا جاتا ہے. صحیح ہے، تو دنیا کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ ہی سے تلاش کرتے ہوئے، یعنی ان کی نیت یہ کیا تھی کہ دنیا میں بھی جو کچھ ملے وہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں اور ہمیں جو کچھ ملے گا. اب یہاں پر نا بہت سارے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ جی نیکی جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور نہیں مانگ سکتے، کیا کسی بھی دنیاوی مقصد سے ہم کام نہیں کر سکتے کوئی بھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو بھی مانگنا ہے، چاہے آخرت کی نعمتیں مانگو چاہے دنیا کی نعمتیں مانگو، سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے. ٹھیک ہے، تو جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے. تو یہ جو مانگنا ہے نا، مانگنے کا فعل جس کو دعا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے. ٹھیک ہے نا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا یہی عبادت ہے. مطلب یہ نہیں کہ نماز عبادت نہیں ہے یا دوسری چیز عبادت نہیں ہے، بلکہ دعا جو ہے اگر یہ عبادت نہیں ہے تو اور کیا چیز عبادت ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو اب دعا آپ آخرت کے لیے مانگیں، دنیا کی چیزوں کے لیے مانگیں، دعا مانگنا اٹ سیلف عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیوں نہ مانگیں بھائی؟ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ یعنی دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ بہت بڑا مقام ہے. ایکچولی یہ اللہ والوں کا مقام ہے کہ وہ ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں، صرف جنت نہیں، दुनिया की भी हर चीज अल्लाह से मांगते हैं, ठीक है। तो दुनिया की चीज मांगना अगर अल्लाह से मांगी जा रही है तो ये कोई दुनिया परस्ती नहीं है, ये दुनिया की मोहब्बत नहीं है, क्योंकि अल्लाह से मांगी जा रही है, ठीक है। पहली बात ये कि दुनिया की बात मांगना जो है वो अल्लाह ताला से बुरा नहीं है, बल्कि मांगना इटसेल्फ इबादत बन जाता है, क्योंकि अल्लाह से मांग रहे हैं ना भाई, सही है। और दूसरी चीज ये कि जो कुछ मिल रहा है, दुनिया की चीज मिल रही है, तो उसके ऊपर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, ये भी तो इबादत है, अल्लाह का शुक्र अदा करना, ठीक है। तो दुनिया की नेमतें मिल रही हैं तो उसके ऊपर परेशान ना हो कि मुझे दुनिया की नेमतें क्यों मिल रही हैं, इसका मतलब यह है कि मुझे आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। भाई वो सहाबा का एक मुकाम था, दिल का एक उनकी कैफियत होती थी कि दुनिया की नेमत मिलने के ऊपर परेशान हो जाते थे कि कहीं आखिरत में ऐसा ना हो कि हमें महरूम कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं अभी, ठीक है। तो हम जो है ना वो इतनी ऊंची बातें ना किया करें, बल्कि हम इतना किया करें कि जो कुछ हमें मिल रहा है उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपने हमें दिया है, आपने मुझे दिया है। हत्ता के जो मटेरियल चीजें मिल रही हैं उन पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो दिल को राहत मिल रही है, कोई दिल को इत्मीनान मिल रहा है, खुशी मिल रही है, कोई तमन्ना पूरी हो गई, सही है, उसके ऊपर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। सो मच सो कि अगर औलाद हमारी कोई बात मान लेती है, देखें आप औलाद को कोई हुक्म देते हैं, ठीक है, वो आपके हुक्म पे का इनकार भी तो कर सकती है ना कि नहीं मैंने नहीं माननी आपकी बात, वो आपकी बात को इग्नोर भी तो कर सकती है ना, ठीक है। लेकिन वो अगर आपकी बात को इग्नोर नहीं करती, आपकी बात मान लेती है, तो ये अल्लाह ताला का एक फजल है, ये अल्लाह ताला की नेमत है कि औलाद ने बात मान ली। अगर अल्लाह ताला चाहते तो उस औलाद के दिल में आपकी बात मानने की कोई अहमियत पैदा ना होती, राइट, वो कभी भी आपकी बात ना मानती, सही है। वो औलाद जो है ना वो आपकी मिल्कियत नहीं है, वो हमारी मिल्कियत नहीं है, वो हमारे ना तो गुलाम है और ना कोई वो हमारी कोई प्रॉपर्टी है, वो कुछ भी तो नहीं है वो हमारे, ठीक है। वो तो हमें अल्लाह ताला ने एक अमानत दी है कि भाई इस अमानत में मेरे हुक्म को तुम नाफिज करो, ठीक है, मेरे हुक्म के मुताबिक इस अमानत को इस्तेमाल करो, ठीक है। वो हमारी मिल्कियत नहीं है, वो मिल्कियत अल्लाह की है, औलाद हमारी अल्लाह की मिल्कियत है। तो अगर अल्लाह ताला उसके दिल में ये बात डाल रहे हैं कि अपने बाप की बात मान लो, तो ये अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर, ठीक है, ये अल्लाह का एहसान है। तो भाई अल्लाह का जब इतना बड़ा एहसान हो रहा है तो उस पर अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करें। तो इस वजह से जब भी अपने बच्चे को कोई बात कहें और वो आपकी बात मान ले, फौरन दिली दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। औलाद की किसी अदा को देख करके दिल खुश होता है, फौरन कहें, दिल के अंदर कहें, बेशक जुबान से कहें और भी अच्छा है, ठीक है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, ए अल्लाह आप ही की सारी तारीफें और आप ही के लिए शुक्र है। औलाद को देख देख करके जो है ना इस तरह के अल्फाज कहने चाहिए, सही है, उनके सामने जोर आवाज से भी कहें, उनको भी उनकी भी तालीम हो कि भाई जब दिल खुश हो तो उसके ऊपर अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र कहना है, ताकि औलाद की भी तरबियत हो जाए। इस तरीके से वो आपको जो करता हुआ देखेंगे ना, वो खुद वो चाहेंगे करना, ठीक है, ये बेहतरीन तरीका होता है तरबियत करने का, ठीक है। साजिश का बच्चा अभी बेटा अब तो तकरीबन 5.5 साल का हो चुका है, लेकिन जब वो 3.5 साल का भी शायद नहीं होगा, उससे भी शायद छोटा होगा, कि उसने खुद ही इस आजिज को देखा कि जो हमारे बुजुर्ग वालिद साहब रहते हैं तो उनका जूता ठीक करते हैं, जूता सामने उनके सामने मस्जिद से निकलते हुए रखते हैं, तो बगैर कुछ कहे हुए उसने जो है वो मेरा जूता ठीक करना शुरू कर दिया। मैंने कभी उससे नहीं कहा था ये बात, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है वो जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो वो खुद भाग करके जाता है, जूता उठाता है और मेरे सामने रखता है। मैंने उसको कभी भी नहीं कहा ये करने के लिए, सही है। तो कैसे उसने किया, देखा, उसने देख करके उसकी तरबियत हुई ना, सही है। तो यही होता है तरबियत का असल तरीका, खाली जो है वो लेक्चर पिलाते रहना जो होता है ना, ये तरबियत का तरीका नहीं होता, वो तो थोड़ा बहुत होता है। लेक्चर पिलाना, लेक्चर सुनाना या कोई तालीम करना, ये बहुत छोटा हिस्सा होता है तरबियत का। असल तरबियत का हिस्सा ये, असल तरबियत ये होती है कि इंसान खुद जो है वो अपनी इसलाह करे, कि उसकी औलाद जो है वो उसको देख करके चीजें सीखे, ठीक है। कैन वी यूज दिस दुआ फॉर द इन्फेंट ऑल्सो, कौन सी वाली दो, हाँ, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, क्या मतलब इन्फेंट ऑल्सो, भाई हर चीज अल्लाह ताला की नेमत है, क्या इन्फेंट अल्लाह ताला की नेमत नहीं है, क्या मतलब, कहना क्या चाह रहे हैं, समझ में नहीं आया आपकी बात। तो अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, यही शायद आपको बोला है, और कौन सी दुआ बोली थी अभी? ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र हर वक्त अदा करना है, हर हर चीज़ के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और अगर औलाद आपकी बात जो है वो नहीं माने, अब जाहिर इन्फेंट के साथ तो ऐसा नहीं होगा ना कि वो आपकी बात नहीं माने, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बच्चा तो फिर ऐसा होता है कि वो आपकी बात नहीं मानता, तो उस वक्त जो है वो अल्लाह ताला से माफ़ी तलाफी में लग जाए और ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है, ये वाली दुआ उसको पढ़नी चाहिए कि ए अल्लाह आप गलती वगैरह नहीं करते कि आपने जो है वो अपने किसी बंदे को मेरी बात मानने से रोक दिया, नहीं बल्कि मैंने खुद अपनी जान पर जुल्म किया, मैंने खुद आपकी बात नहीं मानी, इस वजह से आपने अपने इस बंदे को मेरी बात मानने से रोक दिया। और बंदा कौन है उस वक्त? आपकी अपनी औलाद, राइट, वो अल्लाह का बंदा है, वो अल्लाह की बंदी है। अगर वो आपकी बात नहीं मान रही, वो आपकी बात नहीं मान रहा, तो अल्लाह ने उसके दिल में कोई ऐसी बात पैदा की है कि इसकी बात नहीं मानना, तो उस वक्त आयत करीमा शुरू हो जाना चाहिए जुबान के ऊपर, या इस्तिग़फ़ार शुरू हो जाना चाहिए जुबान के ऊपर, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, यकीनन मैंने आपकी ऐसी नाफरमानी करी है कि मेरी औलाद मेरी बात नहीं मान रही। ये नज़र अगर हमें मिल जाए ना तो हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए, ये नज़र पैदा करने के लिए फिक्र करनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे ऐसी नज़र अता फरमा दे कि हर चीज़ में मुझे तू याद आना शुरू हो जाए। तो ये लोग जो करते थे ना, ये दुनियावी जो जो इन्होंने फजल था ये भी अल्लाह ताला ही से मांगते थे, ठीक है, तो इनकी हिजरत जो थी वो दुनियावी फजल के लिए भी थी और अल्लाह ताला की रजा के लिए भी थी, आखिरत की नेमत के लिए भी थी। इसीलिए मफहूम यह हुआ कि इन हजरात ने अपने सारी चीज़ों को छोड़ दिया और अब दुनियावी जरूरियात भी और आखिरत की नेमतें भी सिर्फ इस्लाम के साए में ही मतलूब थी। ये नहीं था कि जो हमने हिजरत करी है तो अब तो हम ना जो इबादतें करेंगे तो वो तो हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ मिल करके करेंगे, आपसे की सोहबत में करेंगे, राइट, लेकिन हमारी तिजारत जो है ना वो अभी तक उसी पुराने तर्ज पे चलती रहेगी जिस तर्ज पे हम इस्लाम से पहले किया करते थे, ठीक है, ये नहीं होता था उनके साथ, बल्कि इनका सब कुछ, इनकी इबादतें भी और इनके मामलात भी, इनके जो बै और शरा वाली जो कुछ भी होता था, इनकी ट्रेड, इनकी फाइनेंस, हर चीज़ जो है वो दीन इस्लाम के तहत आ गई थी, राइट, और यही असल में दीन इस्लाम, ये सिर्फ जो है वो मुसल्ले की इबादत या मस्जिद की इबादत का नाम नहीं है, बल्कि हर चीज़ हमारे घर के मामलात सब कुछ दीन इस्लाम के ताबे हो जाए। तो ये इनकी सिफत, ये दूसरी सिफत थी इनकी, ठीक है। तीसरी सिफत क्या फरमाई थी कि यंसुरून अल्लाह व रसूला, कि इन्होंने जो ये सारे काम किए थे तो अल्लाह के दीन की मदद के लिए किए थे, ठीक है, यानी नबी अलैहिस्सलाम की ये मदद करते थे और इस तरह से मदद करते थे कि इनका अपनी नीयत नहीं होती थी कि ये दीन की मदद करेंगे, क्योंकि इनको पता था कि ये दीन अल्लाह का दीन है। अगर इनके दिल में ये बात होती ना कि नहीं ये तो दीन जो है नबी अलैहिस्सलाम का दीन है और नबी अलैहिस्सलाम तो हमारी तरह के इंसान है तो इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए, तो फिर तो इनका ईमान ही खराब हो जाता, ठीक है। तो इन्होंने अल्लाह की मदद नहीं करी थी, इन्होंने आखिरत की जजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए दीन यानी अपनी सारी चीजें कुर्बान कर दी थी, अल्लाह ताला ने इसको अपनी मदद करार दिया, ठीक है, यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से इनको तमगा मिला है कि ये मेरे दीन की मदद करते हैं, इनकी नीयत नहीं थी मदद करने की, ठीक है। तो उसी तरीके से ना जब हम अपने उलमा मशायख को जब भी कुछ कभी कोई हदिया दिया करें, जब भी उनके साथ जो है वो कोई भी इस किस्म का मामला क्या करें ना, तो उस वक्त हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम अपनी मदद कर रहे हैं, हम दीन की मदद नहीं कर रहे, हम इनकी मदद नहीं कर रहे, भाई ये तो अल्लाह वाले हैं, ये तो अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं, कुरान की खिदमत कर रहे हैं, राइट, हदीस की खिदमत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला को हमारी मदद की जरूरत नहीं है कि हम अगर नहीं होंगे तो इन ये अपना काम नहीं कर सकेंगे, हरगिज नहीं, अल्लाह ताला इनका इंतजाम किसी ना किसी तरीके से कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्यों करते हैं ये काम? हम जो है वो अपनी मदद के लिए करते हैं, अब ताकि हमारी हमारा अपना ईमान महफूज हो जाए और हमारे आने वाली नस्लों का ईमान महफूज हो जाए। इस वजह से उलमा और मशाइख को जो भी असिस्टेंस बजाय जो असिस्टेंस की जा रही होती है वो इस नीयत से करनी चाहिए, तो जैसे इन लोगों ने करी थी। चौथा वस्फ मैं बयान किया कि उलाई का हुमुस सादिकून, की यही लोग अपने कौल और अमल के अंदर सच्चे हैं। तो इसके तहत फरमाया था कि अगर किसी एक सहाबी को भी झूठा कह दिया या मुर्तद कह दिया ना, तो इंसान का ईमान बाकी नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह ताला की आयत की کا انکار ہو جاتا ہے وہ, ٹھیک ہے, قرآن کی آیت کا انکار ہو جاتا ہے, اور ایک آیت کا انکار بھی انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور یہ بات جو ہے وہ ہم دوسروں کے اوپر اپلائی کرنے کے لیے نہیں سنیں, بلکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ بات سنیں. یہ نہیں کہ دوسرے نے کوئی ایسی بات کر دی ہے تو اب اس کو کفر کافر کہنا شروع کر دیا, کوئی کفر کا فتویٰ لگا دیا, یہ ہرگز یہاں پہ مطلب نہیں ہے, یہ بات کرنے کا مقصد نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد مہاجرین کی بات جب مکمل ہوئی تو فضائل انصار شروع ہوتے ہیں. فضائل انصار میں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی, والذین تبوا الدار والایمان من قبلہم, کہ یہ وہ لوگ, یعنی الذین وہ لوگ, تبوا الدار کہ جنہوں نے یعنی قرار پکڑا گھر کے اندر اور ایمان میں, ول ایمان اور ایمان کے اندر, من قبلہم مہاجرین سے پہلے, ٹھیک ہے, مہاجرین سے پہلے انہوں نے ایمان میں اور اس گھر میں, گھر سے یہاں پر مراد مدینہ منورہ کا شہر ہے, تو انہوں نے قرار پکڑا اس کے اندر, یعنی ان وہ اسٹیبلش ہو گئے گھر کے اندر بھی اور ایمان میں بھی مہاجرین سے پہلے. یحبونا من ہاجر الیہم, وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کری, یعنی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے. ولا یجدون فی صدورہم, صدور صدر کی جمع ہے, صدر جو ہے وہ سینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, یا بالکل جو موسٹ امپورٹنٹ لوکیشن ہوتی ہے نا, جس کو کہ سینٹر آف دا سٹی بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی صدر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ موسٹ امپورٹنٹ لوکیشن ہوتی ہے. تو ہمارے سینے, ہمارے پورے وجود میں جو موسٹ امپورٹنٹ لوکیشن ہے وہ ہمارا سینہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے سینے کے اندر موسٹ امپورٹنٹ لوکیشن جو ہوتی ہے وہ ہمارا قلب ہوتا ہے, تو قلب کے لیے صدر کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے. حالانکہ قلب کا لفظ بھی عربی میں موجود ہے, لیکن کبھی جو ہے وہ قلب کے بجائے صرف صدر کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, جیسا کہ یہاں پر, یعنی یہ اپنے دلوں میں نہیں پاتے تھے حاجتن مما اوتو, جو چیزیں مہاجرین کو دی گئی تھیں ان کے بارے میں کوئی تنگی اپنے دلوں میں نہیں پاتے تھے. اب اس کا کیا مطلب ہے, تفسیر سے لکھتے ہیں کہ تبوؤ, یعنی پیج 373 کے اوپر ہم پڑھ رہے ہیں فضائل انصار میں, کہ تبوؤ ان کے معنی ہیں ٹھکانے بنانے کے, اور دار سے مراد دار ہجرت یا دار ایمان یعنی مدینہ طیبہ ہے, یعنی جہاں پر ہجرت کر کے لوگ پہنچے, ٹھیک ہے, وہ دار ہجرت مراد ہے. اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک حیثیت سے مدینہ طیبہ کو باقی دنیا کے سب شہروں سے افضل قرار دیتے تھے, یعنی ایون مکہ مکرمہ سے بھی, فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام شہر اور ملک جہاں جہاں اسلام پہنچا اور پھیلا ہے سب جہاد کے ذریعے فتح ہوئے ہیں, یہاں تک کہ مکہ مکرمہ بھی, بجز مدینہ طیبہ کے کہ یہ صرف ایمان سے فتح ہوا ہے. یعنی مدینہ منورہ ایک پراپر شہر, ٹھیک ہے, یعنی جو دنیا میں ایک پراپر شہر اگر دیکھے جائے نا باقاعدہ, جن کو کہ مدینہ کا لفظ جن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, تو ان میں صرف مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے جس کا نام پہلے یثرب ہوا کرتا تھا, کہ جہاں کے لوگ جو ہے وہ خود آئے اور ایمان لے کر کے اپنے شہر میں واپس گئے, ٹھیک, کسی بھی قسم کی لشکر کشی وغیرہ اس شہر کے اوپر نہیں کرنی پڑی. تو اس اعتبار سے تو یہ مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ افضل ہوا, کیونکہ مکہ مکرمہ کے اوپر بھی لشکر کشی مسلمانوں نے کری تھی. تو اب یہاں پر نہ کسی سطحی نظر رکھنے والوں کو, جو کہ بہت ہی سپرفیشل طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے, وہ اس بات کو پڑھ کر کے پھر وہی پرانا ایک اعتراض اس کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ تو پھر تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے, کیونکہ یہاں پہ یہی لکھا ہوا ہے نا کہ مدینہ منورہ کے علاوہ تو ساری جگہیں جو ہیں وہ باقاعدہ جنگ کے ذریعے سے فتح ہوئیں, یعنی جنگ کے ذریعے سے اوپن ہوئیں اسلام کے لیے. تو وہی تو کافر لوگ کہتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ یہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کا کیا جواب دیں گے, اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو کہ ہم اپنے مشائخ سے سنتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ جو تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے, تو بھائی تلوار کیا خود سے چلتی تھی, یہ کوئی آٹومیٹک قسم کی تلوار ہوتی تھی جو کہ فرشتے آ کر کے چلایا کرتے تھے اور وہ جو ہے وہ یعنی کہ شہر کو فتح کر لیتے تھے اور مسلمان پھر اس شہر کے اندر داخل ہو جاتے تھے قابض ہو کر کے, نعوذ باللہ, فاتح ہو کر کے, ایسا تو نہیں ہوتا تھا نا, بلکہ یہ تلواریں چلاتا کون تھا, یہ تلواریں بھی تو انسان ہی چلاتے تھے نا, تو ان انسانوں کو کس نے مسلمان کیا, ان کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی تلوار چلائی تھی, कि जिससे कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए, हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा इनके सामने तलवार रखी थी कि कलमा पढ़ो वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा? किसी के साथ ऐसे नहीं किया था, ठीक है ना। उसी तरह मदीना मुनव्वरा के जो लोग मुसलमान हुए तो किसी को तलवार के जोर पर मुसलमान नहीं किया गया था, सारे के सारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक से मुतासर होकर मुसलमान हुए थे या कुरान की आयात से मुतासर होकर के मुसलमान हुए थे, ठीक है। तो एक जवाब जो हमारे मशायख देते हैं वो तो यही है ना कि भाई ये तलवारें चलाने वाले जो थे इनको किसने मुसलमान किया था? इनको तो किसी तलवार ने मुसलमान नहीं किया था, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इस जुमले का मतलब ये नहीं है कि लोगों को तलवार के जोर पर मुसलमान किया गया था, बल्कि इस जुमले का मतलब ये है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हुकूमत कायम की थी, मुसलमानों की हुकूमत जो दुनिया के अंदर फैली है, वो हुकूमत तलवार के जरिए से फैली, ठीक है। हुकूमत के बाकायदा फौज आई मुसलमानों की, उन्होंने जो है वो जंग लड़ी किसी जगह के लोगों के साथ और फिर उस जगह की यानी उसकी फौज को शिकस्त दी और वहां पर फिर इस्लामी हुकूमत कायम कर दी, ठीक है। तो ये तो सिर्फ हुकूमत कायम हुई ना, वहां के लोगों को कन्वर्ट को थोड़ी किया तलवार के जोर के ऊपर, ठीक है। अगर कन्वर्ट करना होता तलवार के जोर के ऊपर तो इंडिया जो है वो आज मुस्लिम माइनॉरिटी मुल्क कैसे रहता? इतनी लंबी, सबसे ज्यादा लंबी अगर कहा जाए तो जो इस्लामी हुकूमत है वो इंडिया के अंदर रही है, स्पेन के अंदर रही है, ठीक है। 800 साल मुसलमानों ने स्पेन के अंदर हुकूमत करी, हमेशा माइनॉरिटी में रहे, राइट। हत्ता के इतने कम थे कि जब क्रिश्चियंस ने मुसलमानों की हुकूमत को शिकस्त दी तो उन मुसलमानों को वापस ईसाई बनाना या वहां से धक्के देकर के बाहर निकाल देना उनके लिए इतना आसान था। चंद सालों के अंदर पूरा स्पेन खाली हो गया, ठीक है, और सिर्फ क्रिश्चियन वहां पे रह गए। तो भाई अगर तलवार के जोर पर लोगों को मुसलमान बनाना था तो स्पेन में हमेशा माइनॉरिटी में क्यों रहे मुसलमान? उसी तरीके से इंडिया के अंदर हमेशा माइनॉरिटी में रहे क्यों मुसलमान? हालांकि सलातीन देहली की जो हुकूमत रही है कितने लंबे अरसे, उसके बाद मुगल हुकूमत रही कितना लंबा अरसा जो है 600 साल का तकरीबन, मेरा ख्याल है 600 साल रही ना, तो मुगल हुकूमत जो है वो इतना अरसा रही। तो तलवार के जोर पर मुसलमान बनाया बनाया नहीं गया, हुकूमती निज़ाम जो है वो तलवार के जोर पर बेशक बनाया गया, लेकिन उस हुकूमती निज़ाम के अंदर सारे लोगों को जो है वो ऐसे अच्छे हुकूक मिलते थे कि लोग जो अपने दीन में रहना चाहते थे वो अपने दीन में रहते थे, जो कन्वर्ट होना चाहते थे वो खुद से अपनी मर्जी से कन्वर्ट होते थे। और इस चीज़ के ऊपर तो कोई मॉरल भी जो है वो एतराज़ नहीं कर सकता। बहरहाल यहाँ पर ये डिस्कशन असल तो नहीं थी, तो आगे चलते हैं कि इस आयत में तबव्वो के तहत दार के साथ ईमान का भी जिक्र फरमाया है, हालांकि ठिकाना पकड़ने का ताल्लुक किसी मुकाम और जगह से होता है। ईमान तो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें ठिकाना पकड़ा जाए, यानी कोई फिजिकल लोकेशन तो है नहीं ईमान की जिसके अंदर आप जो है वो घर बनाए ईमान के अंदर आकर के। तो इसलिए बाज़ हजरात ने फरमाया, यानी बाज़ मुफस्सिर हजरात ने फरमाया कि यहाँ एक लफ्ज़ महजूफ है, यानी छुपा हुआ है, यहाँ पर लफ्जी शक्ल में वो वर्ड मौजूद नहीं है, तो उसको कहते हैं कि ये छुपा हुआ है, महजूफ है, ये डिलीटेड फॉर्म में या इरेज फॉर्म में मौजूद है, यानी अखलसु या तमक्कनु, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है ना वल्लज़ीना तबव्वउ अद्दार वल ईमाना के अंदर अखलसु या तमक्कनु जो है ना वो छुपा हुआ है। क्या मतलब कि तबव्वउ अद्दार तो ठीक है, व अखलसुल ईमाना, ठीक है, अखलसुल ईमाना या तमक्कनुल ईमाना, ठीक है। तो वाओ के बाद या तो अखलसु छुपा हुआ मौजूद है या तमक्कनु छुपा हुआ मौजूद है। छुपा हुआ मौजूद से मुराद यह है कि इसका मफहूम बन रहा है, अखलसु का मफहूम बन रहा है, मीनिंग बन रहा है, यानी मतलब ये होगा कि यही वो हजरात हैं जिन्होंने दारुल हिजरत में ठिकाना बनाया यानी तबव्वउ दारा, और ईमान में मुखलिस और मजबूत होए, अखलसुल ईमाना ईमान में मुखलिस होए और मजबूत है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ इस्तेआरे के तौर पर ईमान को एक महफूज मकान से तशबीह देकर इसमें पनाह गुजीन हो जाने को बयान फरमाया हो, ठीक है। तो यानी मुफसरीन जो हजरात होते हैं ना तो फिर वो बातों को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ईमान जो है वो तो कोई मकान की चीज तो है नहीं कि जिसके अंदर आप तबव्वउ करें, ठीक है, तो फिर अखलसु होगा यहाँ पर छुपा हुआ, ठीक है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि मुफस्सिरीन ने बयान करी जिनके पास अरबी जुबान का बहुत गहरा इल्म होता है, और वो कहते हैं कि हाँ इस तरीके से अरबी जुबान में बात की जाती है, और चूंकि कुरान قرآن جو ہے وہ عربوں کے اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو اسی وجہ سے عرب جیسے اپنے شعر و شاعری کے اندر جس قسم کا اسلوب استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کا اسلوب جو ہے وہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اخلصو یہاں پر پوشیدہ ہے، محذوف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک پاسبلٹی تھی، اخلصو یہاں پر پوشیدہ ہے. اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ نہیں، اخلصو پوشیدہ وغیرہ نہیں ہے یہاں پر، بلکہ ایمان کو ایک مکان سے تشبیہ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو استعارہ کہتے ہیں. جیسے کہ آپ کہیں نا کہ جی کوئی شخص بہت بہادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو استعارتاً ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ بہت بہادر انسان کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو شیر جیسا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جیسے حامد نام ہے کسی بندے کا، تو ہم کہیں گے کہ حامدو کل اسدی، حامد اسد جیسا ہے. تو اس کو کہتے ہیں، حامد کو یعنی آپ کو تشبیہ دے رہے ہیں شیر کے ساتھ، کیونکہ حامد کے اندر جو ہے نا وہ یہ صفات ہیں شیر جیسی، کیونکہ شیر جو ہے مشہور ہے کہ جی بہت بہادر ہوتا ہے. اسی طریقے سے نا یہاں پر بھی استعارہ استعمال کر رہے ہیں کہ ایمان جو ہے نا یہ ایک محفوظ مکان کی جیسی چیز ہے، کہ جیسے مکان کے اندر کوئی داخل ہو جاتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے باہر کے اثرات سے، ٹھیک ہے، چاہے ویدر کے اثرات ہوں، چاہے دشمنوں کے اثرات ہوں، ان سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے نا مکان کے اندر. بالکل اسی طریقے سے جیسے جب کوئی انسان ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے، تو گویا کہ وہ ایمان کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اب جہنم کی آگ اس کو نہیں چھو سکتی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے وہ حفاظت میں آ جاتا ہے. تو یہ یہاں پر مراد ہے، ٹھیک ہے. تو دوسری تفسیر اس آیت کی کیا بنی کہ ایمان کو جو ہے نا انہوں نے ایک محفوظ مکان سے تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ جو لوگ تھے وہ یعنی اس میں پناہ گزین ہو گئے تھے، ایمان کے اندر انہوں نے پناہ لے لی تھی. اچھا، اب اس کے بعد یہاں تک کیا کسی کو کوئی سوال ہے کہ تبوء الدار والایمان کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے ہم تو بہت ہی یعنی سپرفیشل چیزیں پر لیول پہ اس چیز کو دیکھنے والے ہیں نا، تو اتنی تفصیل بھی جو ہے وہ بھی ہم نے کبھی سوچی نہیں ہوگی کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر، ایسے کوئی سوال بھی دل میں پیدا نہیں ہوئے ہوں گے. لیکن مفسرین تو پھر بھی ہمارے لیے بھی ان باتوں کو تھوڑا بہت کھول دیتے ہیں تاکہ ذرا اچھی طریقے سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. اچھا، اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ من قبلہم کیوں فرمایا کہ یہ جو انصار تھے یہ مدینہ منورہ میں اور ایمان میں مہاجرین سے پہلے قرار پکڑ گئے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے پہلے ایمان لے کر کے آ گئے مہاجرین سے، تو ایسے کیوں فرمایا حالانکہ یہ لوگ تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ لفظ من قبلہم یعنی مہاجرین سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ ان انصار مدینہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شہر اللہ کے نزدیک دار الہجرت اور دار الایمان بننے والا تھا، یعنی مدینہ منورہ، اس میں ان لوگوں کا قیام و قرار مہاجرین سے پہلے ہو چکا تھا، اور مہاجرین کے یہاں منتقل ہونے سے پہلے ہی یہ حضرات ایمان قبول کر کے اس میں پختہ ہو چکے تھے، ٹھیک ہے. یعنی مدینہ منورہ میں یہ لوگ پہلے پہنچ چکے تھے مکہ مکرمہ کے مہاجرین سے پہلے. کیا مطلب بھائی؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو اوس اور خزرج کے جو مین قبیلے تھے، ٹھیک ہے، جو انصار کے دو قبیلے کہلاتے ہیں مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ بھی اصلاً یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ بھی جو ہے وہ کئی سو سال پہلے منتقل ہو کر کے مدینہ منورہ میں آئے تھے. کہاں سے منتقل ہوئے تھے یہ لوگ؟ یمن سے منتقل ہوئے تھے، ٹھیک ہے. یہ جو عرب لوگ ہیں نا، یہ اصل میں جو ہے وہ یمن بیس تھے، ٹھیک ہے. یمن کے اندر ان کے میجر قبائل رہتے تھے، اور وہ وہاں سے پھر سپریڈ آؤٹ ہو کر کے جو ہے نا وہ باقی پیننسولا، عربین پیننسولا کے اندر مختلف مختلف جگہوں پہ جا کر کے سیٹل ہوئے. تو ان یمنی قبائل میں سے دو قبائل تھے اوس اور خزرج کے، جو کہ مدینہ منورہ میں آ کر کے سیٹل ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو اگر فزیکل سیٹلمنٹ کی بات کی جائے تو اس میں بھی یہ لوگ مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے مہاجرین سے پہلے مدینہ منورہ میں سیٹل ہوئے تھے، ٹھیک ہے. مکہ مکرمہ کے مہاجرین بعد میں آ کے سیٹل ہوئے تھے. اور ایمان کے اندر سیٹل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے جو ہے وہ مدینہ منورہ میں پہلے سے ایمان کو اسٹیبلش کیا تھا. مکہ مکرمہ کے لوگ جو ہیں وہ بعد میں یہاں پر پہنچے تھے، ٹھیک ठीक है, शुरू में तो क्या हुआ था कि ये लोग खुद उठ करके मक्का मुकरमा गए थे ना, और हज के मौके के ऊपर जो उन्होंने बैत उकबा अवला और बैत उकबा सानिया करी थी, ठीक है, तो वहां पर ये लोग मुसलमान हो गए थे। पहले साल जो है वो कितने लोग आए थे, शायद 7 या 11 लोग आए थे, नबी अलैहिस्सलाम के हाथों में बैत करी थी, ठीक है, और फिर वो वापस गए थे और लोगों में फिर उन्होंने काम शुरू किया, और अगले साल 70 लोगों को लेकर के आए, जिनमें 3 या 2 खवातीन भी थी, ठीक है, फिर उन्होंने बैत करी और फिर उन्होंने आकर के मदीना मुनव्वरा में दीन का काम शुरू किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला थे ना, जिनको के भेजा था बाकायदा दाई बना करके, उन लोगों ने और भी इन लोगों को दीन सिखाया, ठीक है। तो दीन जो है ना वो अच्छा खासा मदीना मुनव्वरा में इस्टेब्लिश हो चुका था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो मुसलमान थे मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके यहाँ पे पहुंचे थे, ठीक है। तो मिन कब्लिहिम से यहाँ पर ये मुराद है, ये नहीं है कि मदीना मुनव्वरा वाले पहले मुसलमान हो गए थे, मक्का मुकर्रमा वाले बाद में मुसलमान हुए थे, ऐसा बिल्कुल भी मामला नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी सिफत फरमाते हैं कि हजरत अंसार की इस आयत में ये बयान की गई है, युहिब्बुना मन हाजरा इलैहिम, यानी ये हजरत उन लोगों से मोहब्बत रखते हैं जो हिजरत करके उनके शहर में चले आए, जो आम दुनिया के इंसानों के मिजाज के खिलाफ है। ऐसे उजड़े हुए खस्ता हाल लोगों को अपनी बस्ती में जगह देना कौन पसंद करता है, ठीक है, कि यानी अपना घर जो है ना वो हर एक को सबसे अजीज होता है, ठीक है ना, अपना जो जो सोशल सिस्टम होता है, अपना एक माहौल मुआशरा बनाया हुआ होता है, तो बड़े अरसे में इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो अब लोग जो है ना वो उसके आदी हो जाते हैं, लोग जो है वो उसको डिस्टर्ब होता हुआ पसंद नहीं करते, ये एक इंसान का मिजाज है, ठीक है, अपने घर के सिस्टम को डिस्टर्ब होना ना यानी बर्दाश्त नहीं कर किया जा सकता, 1-2 दिन की बात होती है इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ज्यादा लंबे अरसे के लिए, 1 दिन मेहमान, दूसरे दिन मेहमान, तीसरे दिन क्या कहते हैं बलाए जान, भाई तीसरे दिन फिर वो बलाए जान बन जाता है, जान की बला बन जाता है फिर वो, ठीक है, कि भाई आप क्या यानी आपने यही रहना है, जाना नहीं है क्या आपको, क्या इस तरह की बातें शुरू हो जाती है ना, ठीक है। तो अगर कोई कहे कि भाई ये मेहमान जो है ना वो तो आपके यहाँ आकर के फिर अब यहीं रहेंगे, इनके जाने वाने का कोई इरादा नहीं है, अब देखें उसके बाद क्या हाल होता है हमारा, राइट, तो हमारा पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है ना बाहर के बंदे के आने की वजह से। और अगर इतनी बड़ी तादाद में जो मुहाजरीन आ जाए तो पूरा यानी घर का नहीं बल्कि पूरा के पूरा मुआशरा ही जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ना इसको कोई पसंद नहीं करता, ठीक है, लेकिन ये आम दुनियादार इंसानों का ये मिजाज होता है, सही है। अब देखें इवन आजकल जो है वो क्या बातें हो रही हैं, जो पड़ोस के मुल्क वाले लोग हैं उनको तो पता है सब कुछ क्या हो रहा है वहां पर, ठीक है, वहां पर भी जो है क्या बातें हो रही हैं कि अगर दूसरे मुल्कों के हिंदू भी जो है वो हमारे मुल्क में आएंगे ना, 3 करोड़ हिंदू आएंगे, तो भाई हमारे अपने मसले इतने ज्यादा है कि उन 3 करोड़ का हम क्या करेंगे, हालांकि वो उन्हीं के मजहब के लोग हैं, उन्हीं के यानी बड़ी अच्छी बातें की जा रही है उनके हिसाब से, यहाँ भाई इन हिंदुओं को हम जगह देंगे, इन हिंदुओं को जो है अपने मुल्क के अंदर कशहरी बना देंगे, वो हिंदू खुद ही कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारे अपने मसले इतने ज्यादा हैं, वो तो वो लाओगे उनको किधर खपाएंगे, हम लोग कहाँ से उनको जॉब देंगे, हमारे अपने बंदों के पास जॉब नहीं है, हमारे अपने बंदों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। तो ये एक इंसानी तबीयत होती है, लेकिन दीन इस्लाम ने इनकी तबीयत को ऐसा बदल दिया था, ऐसे ये लोग जो है वो एकदम गोया के ये इंसानी सिफतें जो है ना इन्होंने उनको दबा दिया था, इन नेचुरल इंसानी सिफतों को जो के इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करती किसी और की, ठीक है, उन्होंने इस अपनी सिफत को जो है वो अल्लाह की रजा की खातिर ऐसे दबा दिया था कि ये जो खस्ता हाल मुहाजरीन मदीना मुनव्वरा के अंदर आ रहे थे तो इनसे ये नफरत तो दूर की बात, बर्दाश्त करना तो दूर की बात, ये उनसे उल्टा मोहब्बत करना शुरू हो गए थे, ये मोहब्बत का जज्बा पैदा होना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये किताबी बातें तो बड़ी आसानी से हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको जरा बैठ करके इसके बारे में मुराकबा भी अगर कर ले ना, कि मैं गोया कि मैं जो हूँ होता है ना वो मुराकबा मौत एक होता है, कुछ मशाइख किया मुराकबा मौत होता है, क्या मतलब होता है इस मुराकबा मौत का, कि आंखें बंद करके सर को झुका करके बैठ जाए और तस्वुर करें कि आप मर चुके हैं, ठीक है, और अब जो है ना वो आपको नहलाया धुलाया जा रहा है और उसके बाद आपको कफन पहनाया जा रहा है, उसके बाद फिर आपको जो है वो उस जो मैयत गाड़ी होती है उसके अंदर रखा जा रहा है और लोग आपको ले जा रहे हैं कब्र की तरफ, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप अपने जहन में सोचें, तो ये जो सोचता है ना बंदा तो उसके फिर औसान खता हो जाते हैं कि ये तो एक दिन मेरे साथ होना है, ठीक है ना, तो इस खौफ की वजह से इंसान जो होता है वो गुनाह छोड़ देता है और नेकी करना शुरू कर देता है, इसको मुराकबा मौत कहते हैं। ठीक है, तो अब इंसान अगर मौत का मुराकबा कर सकता है तो लोग कर से, ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम ये मुराकबा करें कि हम जो है वो उस जमाने में मदीना मुनव्वरा के रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना, और इतनी बड़ी तादाद में मक्का मुकरमा से लुटे फुटे लोग जो है ना वो हमारे शहर के अंदर आ गए हैं और हमसे ये कहा जा रहा है कि उनको अपनी हर चीज के अंदर तुम शामिल कर लो, तो अब हमारा क्या रिएक्शन होगा, राइट? हम कैसे सोच रहे होंगे, और फिर हमारी बीवियां कैसे सोच रही होंगी, हमारे बच्चे कैसे सोच रहे होंगे, ठीक है ना, क्या गुजरेगी हमारे ऊपर उस वक्त। इसका अगर हम थोड़ी देर के लिए बैठ करके मुराकबा करें तो फिर हमें कुछ अंदाजा होगा कि उन लोगों के ऊपर क्या गुजरी होगी। ठीक है, तो फिर मोहब्बत के जज्बे पैदा होना उन लोगों के लिए, तो फिर पता लगेगा कि क्या वाकई हम मोहब्बत कर भी सकते हैं ऐसे ऐसे लोगों के लिए। लेकिन सहाबा का ये मामला नहीं था, बल्कि सहाबा उनसे मोहब्बत करते थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कि दिलों की कैफियत से वाकिफ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो कोई धोखा नहीं दे सकते ना, वरना हम तो ऊपर से बड़ी चिकनी चपड़ी बातें करके और अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके दुनिया को बता सकते हैं ना कि जी हाँ हमें तो भाई जी इन माइग्रेंट्स के साथ, इमिग्रेंट्स के साथ जो है बड़ी मोहब्बत है, और अंदर ही अंदर जो है वो कोस रहे हैं कि ये क्या मुसीबत हमारे ऊपर आन पड़ी है। ठीक है, तो दुनिया वालों को तो हम धोखा दे सकते हैं लेकिन परवरदिगार को तो धोखा नहीं दे सकते ना। तो अंसार के बारे में ये सर्टिफिकेट कौन दे रहा है कि इनको मुहाजरीन से मोहब्बत थी, ये सर्टिफिकेट जो है वो कोई इंसान नहीं दे रहा, कोई मीडिया वाले नहीं दे रहे, हत्ता के अल्लाह के नबी भी नहीं दे रहे ये सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जो है वो अल्लाह ताला खुद दे रहे हैं, ठीक है, कि ये मोहब्बत करते थे, युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम, और अल्लाह ताला को तो कोई भी धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, तो इनके बारे में फरमाते हैं कि ऐसे उजड़े हुए खस्ता हाल लोगों को अपनी बस्ती में जगह देना कौन पसंद करता है, हर जगह मुल्की और गैर मुल्की के सवालात खड़े हो जाते हैं कि ये जी इमिग्रेंट्स हैं, ये तो नए, ये तो हमारे यहाँ जो है वो अफगानिस्तान से कोई 3 लाख मुहाजरीन आए थे, ठीक है, वो 3 लाख मुहाजरीन जो है ना वो आज तक अफगानी कहलाते हैं, बेशक जो दीनदार लोग थे, नेकोकार लोग थे, उन्होंने इनकी बहुत मदद करी, सही है, और उनके साथ जो है वो घुल मिल गए, लेकिन हुकूमती सत्ता के ऊपर उनको कभी भी पाकिस्तानी कंसिडर नहीं किया गया कि जी ये भी हमारे, चूंकि ये मुसलमान हैं और ये दीन की वजह से जो है वो इनको उनके घरों से निकाला गया है, तो अब जी अब ये पाकिस्तानी बन गए, इनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी, ठीक है, ऐसा किसी ने भी नहीं किया, ठीक है ना, वो आज भी अफगान मुहाजरीन ही कहलाते हैं, उनको आज भी जो है ना वो यानी लीगली उनके पास ऑप्शन नहीं है पाकिस्तानी बनने का, पाकिस्तान की हुकूमत में शामिल होने का। अभी एक साहब को जो है वो झूठा मुकदमा बना करके उनको जो है वो सिटीजनशिप से महरूम कर दिया, ठीक है, कि भाई ये असल में अफगानी है, हालांकि वो अफगानी था नहीं, वो अंदा वो तो उसकी नस्लें जो है वो पाकिस्तान में रहने वाली है, ठीक है, लेकिन उसको अफगानी करार दे दिया कि तो अफगानी होना जो है वो जुर्म है गोया के पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो आप तो ये तो हमारी इस्लामी जमहूरिया का हाल है, हकीकत तो हमारी है, ठीक है, हमें तौबा करनी चाहिए इन चीज़ों से, नाम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रखा हुआ है अल्लाह ताला उस अच्छे नाम की वजह से हमें तौबा की तौफीक अता फरमा दे, लेकिन हरकतें हमारी बहुत ही बुरी हैं, ठीक है, तो दीन इस्लाम के नाम पे ना हम किसी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे अपने आप को कितने ही नेक और परहेजगार मुसलमान क्यों ना कहते हो अपने आप को, ठीक है। इसी तरीके से जो जब पार्टीशन हुआ था, इंडिया को जो है वो दो मुल्कों के अंदर तकसीम किया गया था, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, तो उस वक्त जो है वो लाखों 6 लाख जो है वो, या उससे पता नहीं कितने, याद नहीं है मुझे, 6 लाख तो जो रास्ते में मार दिए गए थे वो 6 लाख थे, तो बाकी जो है वो आए थे मुल्क के अंदर, तो उस वक्त जो है वो चूंकि इस्लाम के नाम के ऊपर बात हो रही थी कि भाई इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना है और मुसलमान हैं वो आ रहे हैं, तो उस वक्त बहुत अच्छी आवभगत हुई थी और उनको सिटीजनशिप तो दे दी गई थी, ठीक है, वो इस मुल्क के शहरी बन गए थे, लेकिन जैसे ही ये इस्लाम का जो हमारे ऊपर एक एक जोश चढ़ा हुआ था ना उस वक्त, ठीक है, वो एक बहुत ही जो है वो यानी क्या कहते हैं टेम्पररी किस्म का जोश था, ठीक है, जो कि मुल्क के बनने के वक्त इंसानों के ऊपर चढ़ा था, ठीक है ना, ये जो अवामुन्नास थे ना हमारे, जो कि पाकिस्तान की जो मूवमेंट थी उसके अंदर बहुत शोर मचा रहे होते थे, ये अवामुन्नास थे, ठीक है ना, उलमा की बात मैं नहीं कर रहा, अवामुन्नास की बात कर रहा हूँ, तो हमारे ऊपर जो है ना वो एक जोश चढ़ा हुआ था कि हाँ लेके रहेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है ना, ये ऊपर ऊपर की बात थी, जाहिरी दीन था ये, अंदर तो ये उतरा नहीं था, ठीक है, तो अंदर चूंकि उतरा नहीं था तो इस वजह से ना ये ऊपर का जो नशा होता है, जो 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 बुखार होता है, ये कुछ अरसे के अंदर उतर जाता है, तो ये बुखार उतर गया ऊपर से, और जब उतर गया तो लसानी झगड़े शुरू हो गए,
ठीक है ना, वो फिर जो है वही तू पंजाबी है, तू पठान है, तू जो है वो सिंधी है, तुम जो है वो उर्दू स्पीकिंग हो, तुम मुहाजिर हो, तुम जो है वो ये हो, तुम जो है वो हो, ठीक है ना, और अपने आप को भी हाँ हम तो ऐसे हैं और हम तो वैसे हैं और हम अलग हैं, हम ज्यादा बेहतर हैं और हम ज्यादा बेहतर हैं और ये, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्यों शुरू हो गई? क्योंकि जो हमारा दीन था वो जाहिरी दीन था, वो हमारे दिलों में नहीं उतरा था, अंदर नहीं उतरा था हमारे, ठीक है। जो दीनदार तबका था, ठीक है, जो मदारिस वाला तबका था, जो खानकाहों वाला तबका था, हमारे ही मुल्क के रहने वाले थे ना वो लोग, उनका दीन चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह अंदर मौजूद था तो उनके अंदर ये चीजें पैदा नहीं हुई, ठीक है। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे एक ही, यानी एक ही जैसे हैं, एक ही आपस में एक दूसरे के साथ शादियां भी करते हैं, आपस में जो है वो मिलजुल करके रहते हैं, तबलीगी जमात के साथ ही हो गए, खानकाहों के साथ ही हो गए या मदारिस के साथ ही हो गए, तो उनके यहाँ तो ये सारी चीजें नहीं हुई। लेकिन जो दुनियादार तबका था, जिन्होंने के नारे मार मार के जो है वो सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान हासिल किया था, उनका ये बुखार उतर गया थोड़े दिनों के अंदर, ठीक है ना। तो ये सहाबा का मामला ऐसा नहीं था, बल्कि सहाबा ने जो है वो अल्लाह की खातिर और यानी दीन की खातिर फिर इन लोगों के साथ मोहब्बत करी थी, और ये मोहब्बत फिर इनकी चलती रही थी। तो फरमाते हैं कि इन हजरात अंसार ने सिर्फ यही नहीं किया कि उनको अपनी बस्ती में जगह दी, बल्कि अपने मकानों में आबाद किया, अपने ही घरों के अंदर, जो कि कोई भी नहीं करता, ना वानियों के साथ किसी ने किया, ना वहां से आने वाले जो इंडिया से आने वाले मुसलमान थे उनके साथ यहाँ पर हुआ, इतना ज्यादा किसी ने भी नहीं किया था जैसे कि इन्होंने किया था। तो अपने मकानों में आबाद किया और अपने अमवाल में हिस्सादार बनाया, और इस तरह इज्जत और एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल किया कि एक एक मुहाजिर को अपने पास जगह देने के लिए कई कई अंसारी हजरात ने दरख्वास्त की, यहां तक कि कुरा अंदाजी करना पड़े कि इसको मैं अपने घर लेकर के जाऊंगा, वो दूसरा कह रहा है नहीं मैं इसको अपने घर लेकर के जाऊंगा, तीसरा कह रहा है नहीं मैं इसको अपने घर लेके जाऊंगा, ठीक है। तो कुरा अंदाजी करनी पड़ी कि भैया जाएंगे किसके घर, कुरे के जरिए से जो मुहाजिर जिस अंसारी के हिस्से में आया तो उसको सपोर्ट किया गया, ठीक है। तो इस तरह के जायज मामले के अंदर कुरा अंदाजी जो है वो की जा सकती है, नाजायज मामलों के अंदर ऑफकोर्स कुरा अंदाजी नहीं की जा सकती कि किसके लॉटरी किसके नाम निकलेगी, तो लॉटरी तो जायज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लॉटरी हो रही है ये दूसरी लॉटरी है, ये वो दुनिया वाली लॉटरी नहीं है। अच्छा, तीसरा वस हजरत अंसार का ये बयान फरमाया कि वला यजदून फी सुदूरहिम हाजतम मिम्मा ऊतू, कि इस जुमले का ताल्लुक उस खास वाक़े से है कि यानी ये लोग अपने दिल के अंदर कोई तंगी नहीं पाते उस चीज के बारे में जो कि मुहाजरीन को दे दी गई। तो इस जुमले का ताल्लुक उस खास वाक़े से है जो बनू नुज़ैर के जिला वतन होने और उनके बागात और मकानात पर मुसलमानों का कब्जा होने के वक्त पेश आया, ठीक है, जो कि इस सूरत के शुरू में जो शान नुज़ूल था जो वाक़या, तो उसी के तहत जो है वो ये वाली आयत नाजिल हुई। अब इसकी जो शान नुज़ूल है उसमें बड़ी तफसीलात आती हैं, तो वो लिख रहे हैं कि अम्वाले बनू नुज़ैर की तकसीम का वाक़या। अच्छा, किसी को कोई सवाल या कोई कमेंट वगैरह नहीं? काफ़ी देर से मैं बोलने चला जा रहा हूँ, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि अब रुक करके आपसे सवाल आप पूछे जाएंगे, बल्कि बीच में भी किसी को कोई सवाल हो तो वो लिख दिया करें। तो अम्वाले बनू नुज़ैर की तकसीम का वाक़या, सूरत ये थी कि जब इस आयत में अम्वाले फ़े की तकसीम मुहाजरीन और अंसार वगैरह में करने का इख्तियार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया गया। अम्वाले फ़े क्या था? वो माल जो कि लड़ाई के बगैर हासिल होता है, उसको माले फ़े कहते हैं, ठीक है। तो ये माले फ़े जो है वो कम्प्लीटली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया जाता था कि अब आप इसको जैसे चाहें जो है ना तकसीम करें, यानी जितना चाहें तकसीम करें, जैसे चाहें का तो बता दिया कि ये आपके लिए है और आपके कराबतदारों के लिए है और यतीमों और मिसकीनों और मुसाफिरों के लिए है, ठीक है। तो ये तो बता दिया अल्लाह ताला ने, लेकिन कितना किसको देना है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सवाबदीत पर छोड़ दिया था। तो ये माले फ़े था, तो ये इख्तियार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया गया था। ये वो वक्त था कि मुहाजरीन के पास ना
पूरा
अपना
अभी
कोई
जो
मकान
आयत में
था
जैसे
ना
उस वक्त
घर
में
था,
ना
वो हजरत
पावर
अंसार
में
के
ना
मकानों में रहते थे और उन्हीं की जायदादों में मेहनत मजदूरी करके
नहीं
गुजारा किया करते थे,
वहाँ के
यानी
लोगों
उन्हीं
ने
के खेतों में काम कर रहे हैं,
उसको
उन्हीं के बागात के अंदर काम
बात
कर
कर
रहे
रहे
हैं,
हैं
या कोई दुकान
उसको
वगैरह
पूरा
तो उसके
मतलब
अंदर ही
वो
ये काम कर रहे होते थे।
इंडिया के
जब
बारे में
बनू
जैसे यहाँ
नुज़ैर और
हिजरत
बनू
करके नहीं गए थे
कैनुका
लोग,
के बाग
कह रहे कि पहले
हासिल हो,
जो
ये दोनों
जिन्नार लोग
यहूदियों के दो कबाइल हैं,
एक्सेप्ट कर
बनू
लिए हैं,
नुज़ैर का
बाकी
वाक़या
जो नारे
सूरह
मार
हशर
मार
के
के
अंदर
लेकर
है
गए
और
थे
बनू कैनुका का वाक़या जो है
खाने की,
अजाब के
वहां
अंदर
जाने के बाद
आता है।
फिर आपस
तो जब
में
इनके
वो
अम्वाल
चीजें
बतौर
वो
फ़े के मुसलमानों को हासिल हुए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार मदीना के सरदार साबित बिन कैस बिन शमास रजी अल्लाह तआला अन को बुलाकर फरमाया कि अपनी कौम अंसार को मेरे पास
किया
बुलाओ। समवन इज नॉट म्यूट, पता नहीं नजर तो यार जो अनम्यूट होते हैं तो
वो ऊपर आ जाते हैं डिस्प्ले में, लेकिन अभी तो कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको कहीं और से नहीं आवाज आ रही होगी? लॉटरी इज नॉट अलाउड बट इन शॉप समटाइम्स दे गिव प्रेजेंट्स बेस्ड ऑन पिकिंग वन रैंडम टोकन एक्सेट्रा, व्हाट अबाउट इट? क्या मतलब बेस्ड ऑन पिकिंग वन रैंडम टोकन? अच्छा, इसकी मुझे तो पता नहीं कि क्या आप सूरत बयान कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि इस तरह के सूरत बयान करके किसी मुफ्ती साहब से फतवा ले लिया जाए, ठीक है, या बाद में कभी बात होगी तो उसमें। सही है। अच्छा, तो फरमाए कि बनू, क्या लिखा था, हाँ, कि अपनी कौम के लोगों को मेरे पास बुलाओ। तो उन्होंने पूछा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंसार के अपने कबीले खजरज को या सब अंसार को मैं बुलाऊं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि सबको बुलाना है, यानी सारे अंसारों की बात, अंसार की बात हो रही है यहाँ पर, कि सबको बुलाओ मेरे पास। ये हजरात सब जमा हो गए, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया जिसमें हमदो सलात के बाद अंसार मदीना की इस बात पर मदाह व सना फरमाई कि उन्होंने जो सलूक अपने मुहाजिर भाइयों के साथ किया वो बड़े अज़्म व हिम्मत का काम था। ठीक है, यानी ये उन मौके में से एक मौका था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा खुतबा दिया। हदीस से मुबारका के अंदर जो बड़ी मोटी मोटी किताबें हदीस की मौजूद है ना, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, ठीक है, तो उसमें खुतबे जो हैं, यानी बाकायदा एक बयान की शक्ल में, ये बहुत कम है। ठीक है, ज्यादातर हदीसें क्या होती हैं, एक एक जुमला, दो दो जुमले, तीन तीन जुमले, और इंटरेक्टिव, कि सहाबी ने आके सवाल पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ठीक है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल पूछा तो सहाबा ने कुछ जवाब दिया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से कुछ कहा, यानी इंटरेक्टिव रिकॉर्ड है ये हदीस मुबारक। ये जो वन वे वाला मामला होता है ना, कि जिसके अंदर एक बंदा बोले चला जा रहा है, बाकी सारे के सारे सुन रहे हैं, उसको खुतबा कहा जाता है। ठीक है, हमारे कॉन्टेक्स्ट में उसको उसको बयान कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत कम पाए जाते हैं हदीस मुबारक में, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मामला कम किया था। ठीक है, तो ये वाकया जो था उनमें से एक मौका था कि जब आपसे उसने खुतबा बाकायदा दिया, और इस खुतबे के अंदर जो है वो अप्रिशिएट किया, यानी उनकी नेकी की तारीफ करी। ठीक है, तो अब नेकी की तारीफ करना, अप्रिशिएट करना जो है ना, ये भी अच्छी बात होती है, और ये भी कभी कभी जरूरी होता है। ठीक है, ये खाली इस तरीके से नहीं कहा जा सकता कि भाई हाँ, इन्होंने जो नेकी करी है तो इन्होंने तो अपने लिए करी है, और इन्होंने तो आखिरत के लिए करी है, तो अब हम क्यों अप्रिशिएट करें इनकी नेकी को? ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए खुसूसन छोटों के साथ। ठीक है, यानी छोटों में से जैसे कि अपनी घर वाले लोग होते हैं, बीवियां होती हैं। ठीक है, तो बीवी अगर कोई नेकी का काम कर रही है ना, तो उसके ऊपर उसकी तारीफ कर देना जो है, इससे उसको और ज्यादा इनकरेजमेंट मिलती है कि वो और नेकी का काम करे। ठीक है ना, अब वो अल्लाह को राजी करने के लिए नेकी कर रही होगी, खामखा उसके ऊपर शुबा करना कि नहीं, ये तो अल्लाह के लिए नेकी नहीं कर रही है, बल्कि जो है ना, वो किसी अल्टीरियर मोटिव की वजह से नेकी कर रही है। ठीक है, तो ऐसे खामखा शुबा नहीं करना चाहिए, बल्कि बेहतर यह है कि अच्छा गुमान रखना चाहिए। ठीक है, कि अल्लाह के लिए नेकी कर रही है, तो अब उसकी तारीफ कर देना कि जी आपने बहुत अच्छा काम किया, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जब आप इस तरीके से जो है वो पर्दा करती हैं, जब आप नमाज पढ़ती हैं, ठीक है ना, जब आप जो है वो किसी के साथ एहसान वाला मामला करती हैं, खुश अखलाकी के साथ पेश आती हैं, तो आप बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा काम किया आपने। ठीक है ना, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जजाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको जो है वो और ज्यादा अपनी मकबूल बंदियों में शामिल फरमाए। इस तरह की जो है ना, ये अल्फाज घर में इस्तेमाल करते रहना चाहिए कभी। ठीक है, बिल्कुल ही, यानी कुछ और किस्म का इंसान बन के नहीं रहना चाहिए कि नहीं बस ये तो कर रही है, तो बस कर रही है ना, अल्लाह के लिए कर रही है, मेरे लिए कौन सा कर रही है। ठीक है, नहीं, वो अल्लाह के लिए कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, लेकिन वो आपके लिए भी कर रही है। ठीक है ना, अगर वो एक्सप्लिसिटली उसकी नीयत में ये नहीं है कि वो आपके लिए कर रही हो, फिर भी उसकी इस नेकी का आपको भी फायदा हो रहा है, इसलिए कि उसकी नेकी का जो असर है ना, वो आपके घर के अंदर पड़ रहा है, घर के अंदर जो बरकतें आएंगी, घर के अंदर अल्लाह ताला की रहमत आएगी ना, उसमें आपकी बीवी की नेकी का यानी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से उस बरकत का चूंकि आप भी फायदा उठाएंगे, ठीक है ना, जब बरकत आएगी तो आपको भी तो फायदा मिलेगा ना, तो आपकी बीवी जो है वो अल्लाह ताला के लिए तो कर रही है, लेकिन नेकी करके वो आपके ऊपर भी एहसान कर रही है एक्चुअली। उसी तरीके से उसकी नेकी का असर जो है वो उसकी औलाद के ऊपर भी आएगा, तो औलाद तो आपकी भी तो है ना, तो अगर उसकी नेकी का असर आपकी औलाद के ऊपर आ रहा है, तो आपकी भी तो हक में बात बेहतर हो रही है ना। ठीक है, औलाद नेक बन रही है, बीवी नेकी का काम कर रही है, तो ठीक
ठीक है, तो इसकी इस यानी इस वजह से उसकी तारीफ करनी चाहिए, और तारीफ करने से फिर इंसान में और ज्यादा जज्बा पैदा होता है नेकी का काम करने का। ठीक है, तो बीवी की तारीफ करना, बच्चों की तारीफ करना, ठीक है, इसमें अलबत्ता इतना ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों के साथ खुसूसा इस तरह से तारीफ नहीं करनी चाहिए कि वो दूसरे एक्सट्रीम पर चले जाए। ठीक है, तो इस तरह से कंट्रोल तारीफ करनी चाहिए कि उनको इनकरेजमेंट मिले और वो अच्छा फील करें नेकी की वजह से, लेकिन ऐसा ना हो कि अब जो है ना वो समझ लें कि हाँ हमने खाली इसीलिए तारीफ यानी इसीलिए नेकी करनी है कि अब्बू से हमें कोई गिफ्ट मिलेगा, अब्बू से हमें कोई प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल रखना होता है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, व्हाट कॉन्ट्रीब्यूशन वी नीड टू गिव ड्यूरिंग दिस एग्जिस्टिंग कंडीशन इन इंडिया, यानी इस एग्जिस्टिंग कंडीशन इन इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, यानी इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है जो स्पेशली इंडिया के बाहर रह रहे हैं लोग उनका, ये सवाल करना चाह रहे हैं या कुछ और पूछना चाह रहे हैं। तो जो बाहर लोग रह रहे हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो बहुत सारे यानी कंट्रीब्यूशंस हो सकते हैं। एक कंट्रीब्यूशन ये हो सकता है कि सबसे अहम और जाहिर है सबसे ज़रूरी वो ये है कि गुनाहों से तौबा करना, अल्लाह ताला से मदद मांगना। ठीक है, यानी दुआ करना और गुनाहों से तौबा करके अल्लाह ताला से दुआ करना, ये सबसे ज़्यादा अहम और बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि करना तो असल में अल्लाह ही है ना। हम कंट्रीब्यूशन अपने तौर पर एड़ी चोटी का जोर लगा दें लेकिन उसके कोई इफेक्ट्स तो नहीं क्रिएट होंगे ना जब तक अल्लाह ताला फैसला फरमाएंगे नहीं। ठीक है, तो अल्लाह ने फैसला फरमाना है तो फिर हम पहले अल्लाह ताला को राजी तो करें ना, ठीक है, और गुनाहों से तौबा करें और दुआ मांगें। फिर उसके बाद दूसरा जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो ये है कि इस सिचुएशन के अंदर किसी तरीके से फसाद वाली सूरत को कंट्रोल करने की कोशिश करें कि ये फसाद की शक्ल इख्तियार ना करे, कि बहुत ही ज़्यादा यानी क्योस शुरू हो जाए, लड़ाई दंगा फसाद और यानी घमसान की जंग किस्म का कोई सिचुएशन पैदा हो जाए। ठीक है, तो फसाद वाली सिचुएशन क्रिएट ना होने दें, उसके लिए जाहिर है आप एक बेसिकली जहन साजी वाला काम ही कर सकते हैं। ठीक है, कि लोगों को समझाएं कि ये यानी फसाद से कोई फायदा नहीं होगा बल्कि इससे मामलात मजीद खराब हो जाएंगे। तो अब इसका फिर हल क्या है कि फसाद कैसे नहीं क्रिएट होगा, तो फसाद कैसे नहीं क्रिएट होगा इसका यही हल है जो कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि जो अकाबिर उलमाए कराम हैं तो उनसे हिदायत ले करके चला जाए। ठीक है, और अगर वो चीज़ वो किसी चीज़ से मना कर रहे हैं तो उससे रुका जाए और दूसरों को भी रोकने की तलकीन की जाए। उनकी जो है ना वो लोग है ना यानी जो यानी बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहा होता है ना, तो दूसरे लोग जो है ना पीछे से उसको बकअप कर रहे होते हैं, हाँ, करो और शोर करो और जो है वो हंगामा करो और जो है वो जो है वो शोर मचाओ और इस तरह से करो। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, कि जज्बाती तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको बाकायदा बाकायदा उनको जो है वो इनकरेज करना शुरू होगा। ठीक है, नहीं, उनको बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करना चाहिए बल्कि समझाना ही चाहिए कि एक ऑर्डर के तरीके से जो है काम करें और उलमा मशाइख की सरकर्दगी में। तो यही बेसिकली इंटेलेक्चुअल लेवल के ही काम है कि जो कि बाहर रहने वालों को करने चाहिए। ठीक है, दुआ और दूसरा ये कि उसको क्योटिक सिचुएशन से बचाने के लिए जितना आप अकली तौर पर लोगों को कन्विंस कर सकें उस तरीके से करना चाहिए। बाकी जो फिर मशाइख हैं जो करने को कह रहे हैं तो वो फिर आप करना चाहिए, वो वही लोग बताएंगे एग्जैक्टली क्या करना है। तो ये कंट्रीब्यूशंस काफ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि बस इतने ही अब हमें जो है वो इतना तो हमने कर लिया है और अब हमें जो है वो कुछ और करना चाहिए। भाई ये जो तीन बातें कही है ना, ये तीन बातें कोई छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत ज़्यादा इनके लिए इंसान को जो है वो तैयार होना पड़ता है और दिल और दिमाग को लगाना पड़ता है। तो इन्हीं तीन को अगर कर लेना तो बहुत फायदा हो जाएगा। शैतान जो है ना वो हमें चूंकि बेचैन और वो करता है ना खुसूसन खबरों के जरिए से, तो इस वजह से हम कहते हैं यार ये तीन चीजें तो हम सुनते ही रहते हैं, हमें कोई असल चीज बताओ करने के लिए। ठीक है ना, वो असल चीज क्या होती है, वो असल खाली वो ये होती है कि जिससे कि हमारे नफ्स को जो है वो इत्मीनान मिल सके। ठीक है ना, वो नफ्स जो है वो कभी इत्मीनान पा ही नहीं सकता,
असल चीज के नाम पर। तो असल चीज तो यही है जो कि हमारे बड़े बताते हैं। तो बहरहाल ये तो एक अलग डिस्कशन आपने शुरू करवा दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया जिसमें हम्द सलात के बाद अंसार मदीना की इस बात पर मदहोसाना फरमाई कि उन्होंने जो सलूक अपने मुहाजिर भाइयों के साथ किया वो बड़े अज़्म व हिम्मत का काम था। इसके बाद आप ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बनू नुज़ैर के अम्वाल आप लोगों को दे दिए हैं, अगर आप चाहें तो मैं उन अम्वाल को मुहाजरीन और अंसार सब में तकसीम कर दूँ और मुहाजरीन बदस्तूर साबिक आपके मकानों में रिहाइश पजीर रहें। ठीक है, यानी जो अम्वाल आए हैं बनू नुज़ैर से तो मैं सब में तकसीम कर देता हूँ और जो महाजरीन आपके घरों के अंदर पहले से रह रहे हैं तो वो वैसे ही रह रहे, और अगर आप चाहें तो ऐसा किया जाए कि ये बेघर और बेजर लोग हैं, यानी इनके पास ना तो घर है महाजरीन के पास, ना इनके पास जो है वो जर और माल है, तो ये अम्वाल सिर्फ उन लोगों में तकसीम कर दिए जाए, यानी महाजरीन में तकसीम कर दिए जाए और फिर ये लोग आपके घरों को छोड़कर अलग अपने अपने घर बसा लें। ठीक है ना, यानी ये जो बनू नुज़ैर का से आया हुआ माल है ये सिर्फ मुहाजरीन को दे दिया जाए जिससे कि ये लोग जो है वो अपने जाती घर बनाने की कुदरत हासिल कर लें। ठीक है, तो देखिए अंसार का जवाब क्या था, क्या बेहतरीन जवाब था उनका। ये सुनकर अंसार मदीना के दो बड़े सरदार हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी राय यह है कि ये सब अमवाल भी सिर्फ मुहाजर भाइयों में तकसीम फरमा दीजिए और वो फिर भी हमारे मकानों में बदस्तूर मुकीम रहे। ठीक है, क्या बात है, राइट। यानी अगर वो सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ ये माल जो है वो मुहाजरीन में तकसीम कर दिया जाए और बस, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि ताकि हमारा हमारी जान छूटे इनसे, ताकि ये हमारे घरों से बाहर निकलें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ठीक है ना, तो ये भी तो एक, यानी इसमें भी तो एक क्या कहते हैं उसको, सेल्फिशनेस जिसको कहते हैं, सेल्फिशनेस थी ना इसके अंदर भी। तो बेशक माल उनको दे दिया जाए लेकिन फिर वो हमारे घरों से बाहर निकल जाए। तो इन दोनों सरदारों ने सादैन जिनको कहा जाता है, साद बिन मुआज और साद बिन उबादा जरतरान, और ये दोनों जो है ना ये आगे भी बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिनमें ये दोनों एक साथ खड़े हुआ करते थे। एक जो है वो औस के थे सरदार और एक खजरज के सरदारों में से थे। ठीक है, तो दोनों ने खड़े होकर क्या पूरी बात करी है कि लेकिन वो हमारे घरों को भी ना छोड़े, वो हमारे साथ बदस्तूर रहते रहें। ठीक है, मुकम्मल बात फरमाई। तो इनकी बात सुनकर तमाम हाजरीन अंसार बोल उठे कि हम इस फैसले पर राजी और खुश हैं। ठीक है, देखें ये होता है प्रॉपर सोशल फैब्रिक। ठीक है, प्रॉपर सोशल फैब्रिक यानी एक एक मुआशरे का जो सही ढांचा होता है ना वो ये होता है कि उस मुआशरे के अंदर कुछ जो है वो सीनियर्स होते हैं, सीनियर्स लीडर्स, ठीक है, जिनको सरदार कहा जाता है, और बाकी लोग जो होते हैं वो फॉलोअर्स होते हैं। जब ये ढांचा रहता है ना तो इसमें बहुत ज्यादा खैर रहती है। तो इसी वजह से ये जो काफिर हैं जो शैतान के मंसूबों को दुनिया के अंदर इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे होते हैं, तो इन्होंने जो इस वक्त एक नई सिविलाइजेशन बनाई है ना, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का नाम जिसको दिया जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में जो सिविलाइजेशन बनाई है इन्होंने या उसको इस्तेमाल करके जो सिविलाइजेशन बनाई है, इस सिविलाइजेशन के अंदर या इस तहजीब के अंदर इस खाके को चकनाचूर कर दिया गया है। ये जो मुआशरे का खाका था, ये जो ढांचा था या सोशल फैब्रिक था, ठीक है, कि लोग जो है वो ट्राइब्स की शक्ल में रहते थे, आज ये क्या कहते हैं, ये इस किस्म के जो हमारे यहाँ इनके जो चेहरे हमारे मुल्कों में भी जो लोग रहते हैं ना इनके जो चेहरे हैं असल में, ठीक है, क्या कहते हैं, ट्राइबल सिस्टम जो बाकी रह गया है कुछ जगहों के ऊपर उसको भी खत्म कर दो। जो थोड़ा बहुत पठानों के अंदर फॉर एग्जाम्पल रह गया है, और तो कहीं पर ट्राइबल सिस्टम रहा भी नहीं है, ठीक है, कम्युनिटी सिस्टम जो है वो चंद जगहों पर अभी भी मौजूद है, जैसे मेमनों के अंदर कम्युनिटी सिस्टम फिर भी किसी शक्ल में मौजूद है, ठीक है, कुछ सुना है कि चिन्योटियों के अंदर कम्युनिटी सिस्टम किसी शक्ल में मौजूद है या गुजरातियों के अंदर कम्युनिटी सिस्टम कुछ शक्ल में मौजूद है, ठीक है, लेकिन असल में जो ट्राइबल सिस्टम था वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका है सारी जगहों से। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, अब कोई लीडर नहीं होता और कोई फॉलोअर नहीं होता, सारे ही लीडर होते हैं, जैसे पहले भी जरा मजाकिया अंदाज में आपको बात समझाई जा चुकी है, सारे लीडर होते हैं, अपने आप को सभी लीडर समझ रहे होते हैं। तो अब ऐसा जो मुआशरा होता है ना जिसमें हर बंदा अपने आप को लीडर समझे, ठीक है, या ये कि दूसरी एक्सट्रीम पर हो,
कि हर बंदा अपने आप को जो है वो फॉलोअर समझे, या तो ये कि हर बंदा लीडर समझ रहा है या हर बंदा फॉलोअर समझ रहा है। तो ये दोनों जो जो शक्लें हैं ना, ये दोनों शक्लें जो है बर्बादी की शक्लें, ठीक है ना। ये मुआशरा जो है ना, इसमें खैर का आना अब बहुत मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है ना, इन दोनों मुआशरों के अंदर। यानी एक मुआशरे में जिसमें कि सारे फॉलोअर्स हों, ठीक है, यानी सारे फॉलोअर्स कब होते हैं कि जबकि उस मुआशरे का हर बंदा जो होता है ना, वो यानी एहसास कमतरी का शदीद शिकार हो चुका होता है, ठीक है। वो मुआशरा ऐसा होता है जिसमें सारे फॉलोअर्स होते हैं। ये बर सगीर में जब अंग्रेजों ने मुसलमानों को कामिल शिकस्त दे दी थी ना, ठीक है, तो उस वक्त मुसलमान मुआशरा बर सगीर में ऐसा मुआशरा बन चुका था, ठीक है। सारे के सारे जो है वो फॉलोअर्स बन चुके थे, और जो चंद जो है वो नहीं बने थे तो वो बिल्कुल ही अलग थे, यानी जो उलमाए कराम थे वो बिल्कुल ही अलग हो चुके थे, ठीक है। ये गुलाम मुआशरा होता है, ठीक है। इनके लीडर जो थे, इनके अपने लोगों में कहीं भी मौजूद नहीं थे, बल्कि इनके लीडर जो है वो बाहर से इम्पोर्ट होते थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो आते थे ना, वो इनके लीडर होते थे, सही है। तो ये गुलामी वाला मुआशरा था। इस गुलामी वाले मुआशरे को कुछ जो है वो जगाने के लिए अल्लामा इकबाल ने खुदी का कॉन्सेप्ट दिया था। ये खुदी का जो कॉन्सेप्ट था ना, ये इस नस्ल के लिए दिया गया था। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, ठीक है ना। ये इन लोगों की बात हो रही थी जो कि अपने आप को सारे के सारे जो है ना वो फॉलोअर बना चुके थे, ठीक है ना। ये खुदी वाला शेर जो है ना, वो हमारे लिए नहीं है, ठीक है। ये हम जो है ना, यानी जो दीनदार पढ़े लिखे दीनदार है, ठीक है, हम पढ़े लिखे दीनदार जो है ना, ये हमारे लिए खुदी वाला कॉन्सेप्ट जो है ये बड़ा जहर है, ठीक है, क्योंकि हम जो है ना सारे के सारे लीडर बन चुके हैं, ठीक है। तो अब तो खुदी हमारी बुलंद इतनी हो चुकी है कि हम अपने आप को खुदा से ज्यादा बुलंद समझना शुरू हो गए, ठीक है। हमारा तो दूसरा मसला शुरू हो चुका है ना, ठीक है। तो बहरहाल, तो ये लोग जो थे ना, इनका मुआशरे का फैब्रिक क्या था कि लीडर्स होते थे, वो लीडर्स जो है वो डिसाइड करते थे और बाकी लोग फिर उनके इनको एग्री कर रहे होते थे, उनके साथ तायीद कर रहे होते थे उनकी बात की। तो इन सब ने कहा कि हम इस फैसले पर राजी और खुश हैं। उस वक्त आज़रसलम ने तमाम अंसार और अबनाए अंसार को दुआ दी, यानी उनके बेटों को भी, उनके सारे लोगों को दुआ दी, और इन अम्वाल को सिर्फ मुहाजरीन में तकसीम फरमा दिया। अंसार में से सिर्फ 2 हजरात को, जो बहुत हाजतमंद थे, इनमें से हिस्सा अता फरमाया, यानी सहल बिन हनीफ रज़ियल्लाहु ताला और अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला, बहुत बड़े, फिर वो बाद में मुजाहिद भी बने थे, अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला, पर हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला को एक तलवार अता फरमाई, जो इबन अबी तहकीक की एक मुमताज तलवार थी, यानी बतौर रिवॉर्ड के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये स्पेशल मामला इनके साथ फरमाया। तो ये एक एक्सेप्शन थी, जाहिर है रूल ये नहीं था कि अंसार को भी कोई चीज़ दी जाए, ये रूल नहीं था इस मामले में। तो ये बस पैराग्राफ जल्दी से मुकम्मल करके फिर आपसे क्लास खत्म करते हैं कि आयत मस्कूरा में जो इरशाद फरमाया, ला यजिदून फी सुदूरहिम हाजतम मिम्मा ऊतू, इसमें हाजत से मुराद हर ज़रूरत की चीज़ है, और मिम्मा ऊतू की ज़मीर मुहाजरीन की तरफ राज है, ठीक है, यानी उनको दिया गया, उनसे किनको दिया गया मुराद है, मुहाजरीन को जो कुछ दिया गया था। तो मानी शायद कि ये है कि इस तकसीम में जो कुछ मुहाजरीन को दे दिया गया, अंसार मदीना ने खुशी से उसको इस तरह कबूल किया कि गोया उनको इन चीज़ों की कोई हाजत ही नहीं है, उनको देने से बुरा मानना या शिकायत करना इसका तो दूर दूर तक कोई इम्कान ही नहीं था। इसके बिलमुकाबिल जब बहरीन फतह हुआ, अच्छा अब ये तो बात हो रही थी बनू नज़ैर के फतह होने की, कि उसमें सब कुछ जो है वो मुहाजरीन में तकसीम कर दिया गया, और अंसार ने इसके ऊपर बिल्कुल बुरा नहीं माना, ठीक है ना, बल्कि उल्टा जो है वो इस बात की खुद तायद करी कि उनको दे भी दिया जाए और हमारे घरों में वो बदस्तूर रहते भी रहे, ठीक है। लेकिन जब उसके बिलमुकाबिल बहरीन फतह हुआ, बहरीन जो कि बराबर वाला मुल्क है, अब तो दो बहर, उसके उधर भी समंदर है, उसके इधर भी समंदर है, ठीक है, तो उस वजह से इस जगह को बहरीन कहा जाता है, दो बहरों वाला, दो समंदरों वाला। तो जब बहरीन फतह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि ये पूरा माल सिर्फ अंसार में तकसीम कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि पहला वाला जो था वो पूरा मुहाजिरीन में तकसीम कर दिया, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि अंसार में तकसीम कर दिया जाए, मगर अंसार ने इसको कबूल ना किया। अब देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत को अंसार ने कबूल नहीं किया, तो ये तो बज़ाहिर बहुत बड़ा गुनाह लगता है, कुफ्र लगता है बल्कि, राइट, कि पीछे अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि जो आप वो आपको दे दें तो उसको ले लो, और जिससे वो मना कर दें तो उसको रोक दो, उससे मना हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर अंसार तो उल्टा काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो मामला था उसमें नीयत को देखा जाएगा, और जो कॉन्टेक्स्ट है इसका पूरा कुबरा सियाक सबा वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो इस वजह से ना ये अल्फाज को आप यानी एक ही मीनिंग को जो है वो हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए जो है वो इज्तिहाद की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा यानी फिका की जरूरत पड़ती है, समझ की जरूरत पड़ती है कि फलाना जो हुक्म था वो किस सिचुएशन के लिए था, वो हर सिचुएशन के ऊपर बिल्कुल लफ्जन लफ्जन अप्लाई नहीं हो सकता, सिचुएशंस के मुताबिक जो है वो अहकाम बदल भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मामला था वो ये था कि नबी अलैहि सलाम जो है वो एक चीज जो चाह रहे थे ना, तो उसके अंसार ने उसको कबूल नहीं किया, बल्कि अर्ज किया कि हम उस वक्त तक नहीं लेंगे जब तक हमारे मुहाजिर भाइयों को भी इसमें से हिस्सा ना दिया जाए। यानी आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि सारे मुसलमानों में किया जाता है, आप अंसार और मुहाजरीन सब में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हम मुहाजरीन के बगैर जो है वो ये मान ले लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें खालिस्तन मुहाजरीन की खैर ख्वाही थी और यानी बहुत ही अच्छी बात थी इसमें। चौथा वस्फ चले अगली अगली क्लास में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इसहार के मुताल्लिक है और इसहार के बारे में मजीद कुछ तफसीलात भी आपसे करनी है इंशाल्लाह डिस्कस। तो किसी को कोई सवाल है तो अभी पूछ ले, अदरवाइज क्लास खत्म करते हैं। आप में से कोई जो आए हुए ना इस्लामिक रूट्स के नाम से, तो बेहतर होगा कि अगर आप अपना असल नाम यहाँ पे इस्तेमाल कर लें, ठीक है, क्योंकि क्लास में फिर पता भी ज़रा होना चाहिए ना कि कौन क्लास ले रहा है कौन नहीं। तो इस्लामिक रूट्स से तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। चलिए, बाद में कोई क्लास में कोई सवाल नहीं है तो क्लास खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।